जैसे ही अयांश ने पानी से भरा जग आरवी पर उंडेला, वो अचानक सुबकते हुए उठ खड़ी हुई। इतने जोर से पानी लगा कि वो होश में आ ही गई। गुड मॉर्निंग वाइफी, अयांश ने टेबल पर जग रखते हुए कहा। आरवी के चेहरे पर पानी टपक रहा था, उसकी पलकें लगातार छपछप रही थीं। क्या हुआ? इस बात से अनजान आरवी ने अपने चेहरे पर दोनों हाथों की हथेलियां फेरकर चेहरा साफ किया और अपने होंठ अंदर बाहर करते हुए अयांश की ओर देखा, जो हाथ बांधे ठीक उसके सामने खड़ा था। आरवी को अपनी ओर देखते देख अयांश बेड पर उसके सामने बैठ गया और बोला, कितना सोती हो तुम, बड़ी वाली आलसी बीवी मिली है मुझे। देखो तुम्हें उठाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये सुन आरवी ने एक नज़र अयांश की ओर एकटक देखा और फिर इधर उधर कमरे की ओर देखते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, हैरान होते हुए। अयांश आरवी के पास से खड़ा होते हुए बोला, वैसे आइडिया अच्छा था तुम्हारा बेहोश होने वाला। तुम इस घर में नहीं आना चाहती थी और अब देखो तुम बेडरूम में हो मेरे। अपनी जिद भी नहीं छोड़ी तुमने और अंदर भी आ गई। और कैसे आई? तुम्हारा डेविल हस्बैंड अपनी बेहोश वाइफ को अपनी बाहों में उठाकर यहाँ लेकर आया है, फट से आरवी पर झुकते हुए। अयांश के पास आते ही आरवी पीछे की तरफ झटके से हट गई। उसका सिर पीछे बेड से लगा कि अयांश ने अपना हाथ सिर के पीछे लगा लिया। इस वक्त अयांश आरवी के बहुत करीब था और धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, संभल कर मेरी जान, चोट लग जाएगी। वैसे बेहोश वाला ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी मिसेज मेहरा, ये घर तुम्हारा ही है, अब खुद से ही चली आती अंदर, भौहें उठाते हुए। तभी आरवी अयांश को अपने हाथों से धक्का देकर पीछे कर देती है और बेड की दूसरी साइड उतरकर खड़ी हो जाती है। मैंने कोई ड्रामा नहीं किया, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं बेहोश हो गई थी, अयांश बेड से उठकर आरवी की ओर आते हुए बोला। सच में तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारे साथ क्या होता है। अयांश को अपनी ओर आते देख आरवी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी और अपनी दोनों मुट्ठियों में अपना लहंगा जमा लेती है। अयांश के कदम अपनी ओर बढ़ते देख आरवी घबराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। अयांश आरवी को ये सब करते देख मुस्कुराते हुए उसके करीब आ ही गया। आरवी पीछे दीवार से जा लगी। देखिए आप, आरवी कहती ही है कि अयांश आरवी के चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से पीछे करते हुए बोला। क्या देखूं? आरवी असहज महसूस कर रही थी। वो साइड होने लगी कि अयांश ने फट से अपनी बाह आगे लाकर दीवार पर हाथ रख लिया। आरवी दूसरी साइड से निकलने लगी कि अयांश ने दूसरा हाथ भी दीवार से लगा लिया। अब आरवी अयांश की बाहों के बीच थी। थूक निगलते लगातार पलकें झपकाते हुए अयांश की ओर देखती है तो अयांश दाएं बाएं गर्दन हिलाकर वहां से हिलने से मना कर देता है। आरवी लड़खड़ाती जुबान से, हटिए। अयांश मुस्कुराते हुए, क्यों? आरवी, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। अयांश आरवी की ओर थोड़ा झुकते हुए, गलत भी नहीं कर रहा हूँ, हक है मेरा। वैसे भी कल ही हमारी शादी हुई और तुमने मुझे करीब भी नहीं आने दिया। तुम्हारी जिद की वजह से कल रात मैंने अपनी सुहागरात भी नहीं मनाई। सोच रहा हूँ सुहाग दिन बना लूँ, हो सकता है ना ऐसा, तुम भी यहाँ मैं भी यहाँ अपने कमरे में। अयांश बोल ही रहा था कि आरवी उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और वहां से भागने लगी कि अयांश ने आरवी की कलाई पकड़ ली और पीछे खींचकर वापस दीवार से लगा लिया। कहाँ भाग रही हो? आरवी को कंधों से पकड़ते हुए। आरवी कसमसाते हुए, छोड़िए मुझे। अयांश, अजीब लड़की हो तुम, जब चोट देता हूँ तो आंखों में आंखें डालकर बात करती हो बिना किसी डर के, और जब करीब आता हूँ तो डरकर भागने लगती हो। अयांश को घूरते हुए अपने दांत पीसते हुए आरवी बोली, आपका दिया हुआ बड़ा से बड़ा दर्द सहन कर सकती हूँ मिस्टर मेहरा, पर आपका स्पर्श बर्दाश्त नहीं होगा, घृणा आती है मुझे आपसे। ये सुनते ही अयांश आरवी के बाल अपने हाथ में पकड़ लेता है। अच्छा? आह, अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए आरवी बोली, क्यों, सच बर्दाश्त नहीं होता क्या? हाँ ये सच है, आपका स्पर्श ऐसा लगता है जैसे मैं सबसे गंदी और घटिया चीज के पास हूँ, जहाँ सांस लेना भी दुष्कर हो जाता है। और तभी अयांश गुस्से से तिलमिलाते हुए उसे बालों से पकड़ ही अपने बेड की ओर धकेलते हुए बोला, अब घृणा आए या कुछ भी आए, अयांश मेहरा के स्पर्श के अलावा कोई स्पर्श तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, और अब इस घर के अंदर आ ही चुकी हो तो पड़ी रहो कहीं किसी कोने में, मेरे आने से पहले मेरे इस कमरे से बाहर होनी चाहिए तुम, वरना तुम रोक नहीं पाओगी मुझे तुम्हारे करीब आने से, फिर मेरा स्पर्श तुम्हारी सांसों का चलना ही दुष्कर नहीं, तुम्हारा जीना भी दुष्कर कर देगा। डेविल सी मुस्कान चेहरे पर बिखेर अयांश मेहरा अपना कोट उठाकर वहां से चला गया। उसे जाते देख आरवी चिल्लाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं आपके कमरे में रहने का, ना ही आपके घर में रहने का, खुद ही लेकर आए हो, निकाल दो ना यहाँ से मुझे, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ आप। बेड से उठकर चिल्लाते चिल्लाते आरवी कमरे के दरवाजे तक गई और वहीं जमीन पर बिलकते हुए गिर पड़ी। कभी दर्द देकर डराते हो, कभी अपनी घटिया बातों से, इतना बेरहम पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है। अयांश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे पहुंचा तो दिनकर ही उसे देख सोफे से उठ गए। अयांश रुककर उनकी ओर देखते हुए बोला, होश आ गया है उसे, उसका चिल्लाना तो आप सुन ही चुके हैं, उसको लेकर दादू आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, आप जाकर आराम कीजिए, आकर मिलता हूँ आपसे, और हाँ, फिर भी तरस आए उस पर अपनी करने का मन करे तो राधे को बोलकर सेवा पानी करवा देना। आखिरकार आपके पोते की बीवी है वो, थोड़ा फर्ज आप भी निभाइए। पर लगता नहीं दादू वो कुछ खाएगी, आपका पोता बड़ी जिद्दी बीवी लेकर आया है। मेरे वार का असर नहीं होता, आपके प्यार का क्या असर होगा? जख्मों से पेट भर रही है और आंसू पी रही है। कल से आई थिंक फेवरेट डिश बन गई है उसकी। खैर, फिर से बेहोश हो जाए तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, उसको लेकर बस पानी दे मारना मुंह पर, होश में आ जाएगी। ओके बाय। क्या अयांश वहां से बाहर की ओर बढ़ गया। अयांश बाहर पहुंचा ही कि विनीत से टकरा गया। तुम यहाँ? विनीत, हाँ मैं यहाँ। अयांश, यहाँ क्या कर रहे हो? विनीत, वो दादू से मिलने आया था। अयांश, सीरियसली? और किसी से थोड़ी मिलने आया हूँ। अयांश, जितने स्मार्ट तुम बनने की कोशिश कर रहे हो उतने हो नहीं। विनीत ये सुन अपनी गर्दन पर हाथ फेर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब सबसे स्मार्ट बंदे के सामने हम थोड़े मोटे स्मार्टनेस वाले लोग कहाँ टिक पाते हैं। अब तुम जान ही गए हो तो तुम ही बता दो, दादू कैसे हैं? अयांश, ठीक है। विनीत, गुड। और वो दादू का राधे? वो भी ठीक है, वेरी गुड। और आरवी भाभी कैसी है? जैसे ही विनीत ने ये कहा तो अयांश उसकी ओर गुस्से से देखता ही है कि विनीत बात बदलते बोला, भाभी नहीं, वो लड़की कैसी है? वो दादू ने बताया कि वो बेहोश हो गई थी, तभी तुम्हें भागड़ मीटिंग छोड़कर घर आना पड़ा। अयांश, ओ तो तुम यहाँ उसका हालचाल पूछने आए हो? वैसे दादू ने बताया या तुमने पूछा? और तुम्हें कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं हो रही? परवाह है ना तुम्हारी, अब तुम चले आए तो मैंने दादू से पूछा, तुम ठीक हो तो उन्होंने उसके बारे में भी मुझे बता दिया, और मैं पूछूं या दादू बताएं, बात तो एक ही है ना यार। अयांश उसे घूरते हुए, और तुम भाग कर आ गए खबर लेने? विनीत ने हाना किया ही कि अयांश गुस्से से उस पर चपटा, पर वो पकड़ में आता इससे पहले ही विनीत अंदर की तरफ भाग गया। घर आया हूँ तो दादू से मिल ही जाता हूँ। ऑफिस में मिलो, अयांश ने खुद से कहा और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। विनीत अंदर पहुंचा तो दिनकर जी सोफे पर बैठे थे और राधे उनके पास खड़ा था। हेलो दादू, कहते हुए विनीत ने पास आकर दिनकर जी के पांव छुए और सोफे पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ दादू, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दिनकर जी उनकी ओर देखते हुए, ये तुम्हारी जानकर अनजान बनने की आदत कब जाएगी?
ये सुनते ही विनीत नजरें चुराने लगा तो दिनकर जी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोले, फिक्र मत कर, मैं कुछ नहीं कहता। जैसे तेरा दोस्त मुझे कुछ नहीं बताता, वैसे ही जब तक वो ना चाहे तुम भी कुछ नहीं कहोगे। आखिरकार बॉस जो ठहरा तुम्हारा, उसका कहा थोड़ी टालोगे। जानता हूं मैं, इसलिए नजरें मत चुराओ, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला, जबकि मैं कुछ नहीं जानता और तुम कुछ ना कुछ तो जानते ही हो। विनीत दिनकर जी की ओर देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं दादू। दिनकर जी, रहने दो प्लीज दादू, आप टेंशन मत लीजिए, आप जानते हैं ना अयांश को, आप परेशान होते हैं तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दिनकर जी, और वो खुद परेशान करता है, उसका क्या, मुझे भी और उस लड़की को भी। ऊपर की ओर देखते हुए, मैंने उस लड़की के लिए डॉक्टर को बुलाया था, वो बेहोश हो गई थी, उसे चोट आई है काफी, पर पता चल रहा है अयांश ने डॉक्टर को घर आने से मना कर दिया, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। विनीत दिनकर जी के कंधे पर हाथ रखते हुए, दादू आप परेशान मत होइए, वो कर लेगा हैंडल। दिनकर जी, जाकर देखो उस लड़की की हालत, और अयांश को उस पर तरस भी नहीं आ रहा है। विनीत ऊपर की ओर देखते हुए, मैं चाहकर भी उस लड़की को जाकर नहीं देख सकता दादू, खैर सब ठीक हो जाएगा। राधे, दादू का ख्याल रखना, मैं ऑफिस जाता हूँ, कहते हुए विनीत उसी वक्त वहां से उठकर चला गया। दिनकर जी उसे जाते देख ना में सिर हिलाते हुए बोले, जैसा वो वैसा ये बन गया, रंगत ना तो संगत का असर हो ही चुका है। थोड़ी देर बाद आरवी सीढ़ियों से चलते नीचे आई तो दिनकर जी उसकी ओर गए और बोले, बेटा कुछ तो खा लो, कम से कम पानी तो पी लो, कोई और तो तकलीफ दे ही रहा है तुम्हें, खुद को खुद ही तकलीफ में दो। आरवी दिनकर जी की ओर देखते हुए, वो कोई और आपका ही है, और आप क्यों मेरी परवाह कर रहे हैं, आपके पोते को रास नहीं आएगा, तकलीफ तो है ही, थोड़ी और सही। हल्का सा मुस्कुराते हुए, दिनकर जी किस मिट्टी की बनी हो तुम? आरवी, ऐसी मिट्टी से जिसे आपका पोता ना तोड़ सकता है और ना ही अपनी मर्जी अनुसार ढाल सकता है, कोशिश भी करेगा तो करके देख ले, कुछ हासिल नहीं होगा। आरवी चतुर्वेदी ऐसे सांचे में ढली हुई है कि कोई चाहकर भी उसे बदल नहीं सकता है। आरवी का बेबाक जवाब सुनकर दिनकर जी एक टको से देखते रह गए। क्रमशः